जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी,
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी,
यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं, वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हर मंगलवार को श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर इस्कॉन बेलगाम की ओर से श्रील प्रभुपाद के 125वें आविर्भाव तिथि के उपलक्ष में या वर्ष के उपलक्ष में ये जो प्रभुपाद कथा का आयोजन किया जा रहा है, इस सब में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रति रविवार विभिन्न भक्त प्रभुपाद जी की कथा करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत से और अन्य स्थानों से, तो उसी कथा को हम आज जारी रखेंगे। अब तक कथा ये हुई है कि प्रभुपाद जी कलकत्ता से रवाना हुए 13 अगस्त को 1965 में, और जैसे कोलंबो श्रीलंका पहुंचे 19 को, उसके बाद एक दिन जब और आगे जहाज निकल पड़ी तो 20 तारीख को जन्माष्टमी थी। उन्होंने बीच समंदर में जहाज के भीतर जन्माष्टमी मनाई, और उसके बाद वाले दिन तो उनका आविर्भाव दिवस था। और ऐसे चलते चलते वो पहुंचे सितंबर के 18 तारीख या 17 तारीख को बोस्टन शहर में। बोस्टन शहर और उसके बाद वहाँ से निकल पड़े न्यूयॉर्क के लिए। तो 19 तारीख को वो न्यूयॉर्क पहुँचे। तो इस तरह से 35 दिन पूरे यात्रा की थी उन्होंने कलकत्ता से। और जब बोस्टन आप और न्यूयॉर्क आप पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ हम आगे देखते हैं। तो जिस तरह से भगवान के लीलाओं का श्रवण करना, भगवान का गुणगान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए बहुत लाभदायक है भक्ति के लिए, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना, उनकी जीवनी की चर्चा करना, उनकी शिक्षाओं की चर्चा करना, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो भगवान और भगवान के भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान और भी प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इतने विशेष भक्त हैं, उन्होंने आधुनिक काल में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया जो शायद ही इतिहास में किसी ने किया हो इस प्रकार का, कम से कम पिछले अनेक शतकों से, क्योंकि सारे विश्व भर में भ्रमण करके केवल 12 वर्षों में उन्होंने 100 से अधिक शाखाओं की या मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने हजारों की संख्या में भक्त बनाए, 80 से भी अधिक उन्होंने किताबें छाप ली। तो इस तरह से जो उन्होंने कर दिखाया वो बिल्कुल अद्भुत है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद के बारे में हम जब सुनते हैं, और विशेष करके क्योंकि वो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, तो उनके बारे में सुनना हमारे लिए नित्य नियम से बहुत आवश्यक है। तो खैर, अभी प्रभुपाद जी आ पहुँचे न्यूयॉर्क। अभी हमें ये याद रखना चाहिए कि क्योंकि जब शुद्ध भक्त मनुष्य समाज में रहते हैं, उनका बर्ताव भी साधारण मनुष्यों की तरह ही प्रतीत होता है। वो भी इसी तरह से भ्रमण करते हैं, चाहे हवाई जहाज़ में हो चाहे नौके में हो, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो इस तरह से हमें ये एक विचार मन में आने की संभावना है कि ये तो साधारण व्यक्ति हैं। परंतु इस तरह के अवज्ञा से हमें बचना चाहिए, अति परिचयात अवज्ञा, तो इससे हमें बच लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए शायद साधारण लग सकती हैं बातें, परंतु साधारण नहीं है। उन्होंने हमें अपने जीवनी से दिखाया है कि कितनी तपस्या उन्होंने की इस आंदोलन को शुरू करने के लिए। 70 साल के आयु में समुद्र पार करके अमेरिका गए, पहले कभी भी वो विदेश नहीं गए थे। वहाँ पे बस एक परिवार का पहचान की पहचान थी वहाँ पर, और वो भी अधिक समय के लिए नहीं रह पाते थे वहाँ पर, तो और पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। बिल्कुल जब वो उतरे तो जेब में 40 रुपये थे और कुछ $20 ऐसे कुछ थे। और वो $20 कहाँ से मिले? जो जहाज के कप्तान थे, कप्तान पंड्या, उनको उन्होंने उनके नए नए जो छपे हुए भागवत हैं पहले दो स्कंद वो उनको बेच दिए, इसलिए उनको वो $20 मिल गए। और फिर जेब में भारत से लाए हुए 40 रुपए थे, वो $7 उस जमाने के। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जब निकले तो उनके मन में कितना एक कितनी श्रद्धा हुई होगी, कितनी निष्ठा हुई होगी, कितना साहस हुआ होगा कि ऐसा कदम उन्होंने उठाया। तो खैर जब वो पहुँचे जलदूत जहाज के द्वारा न्यूयॉर्क में, तो जैसे ही शहर के निकट पहुँचे समुद्र में से, तो उन्होंने वहाँ के गगनचुंबी अट्टालिकाओं को देखा, बड़े 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 सारी इमारतें, और इतने कभी बड़ी इमारतें भारत में तो दिखे नहीं थे उस समय में। कितने लंबे होते थे इमारत, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 10, बस इससे अधिक लंबाई में तो बिरला ही कहीं इमारत दिखाई पड़ते थे। वहाँ जाके उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखा, न जाने कितने मंजिल, शायद 100 मंजिल या अधिक भी थे। तो इस प्रकार से जब वो पहुँचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सारा न्यूयॉर्क शहर को देखकर। और लेकिन जब वहाँ पहुँचे वो, उन्होंने अपने वस्त्र बदले नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अभी विदेश आया हूँ तो मुझे अभी विदेशों की तरह वस्त्र पहनने चाहिए, अब ये मेरी धोती है, मेरा कुर्ता है, कंठी माला, तिलक और सर मुंडवा के आया हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं ये सब बदल लूँगा और इन्हीं के तरह मैं वस्त्र पहनूँगा, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं सोचा। उनके पहले भी और लगभग उनके साथ भी अनेक ऐसे भारत से योगी, बाबा, स्वामी इत्यादि सब आए थे, और अधिकतर इनमें से जो भी थे उन्होंने अमेरिका की वेशभूषा, अमेरिका के खान पान और रहन सहन, इन सब चीज़ों को अपनाया। बल्कि जब बाद में चल के प्रभुपाद जी अनेक लोगों से मिले थे, तो एक भारतीय इसी तरह के स्वामी ने भी कहा था उनसे कि आपको भी इनकी तरह रहना होगा, नहीं तो आप इन तक आपका संदेश पहुंचा नहीं पाएंगे। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं 4 नियमों का पालन करूंगा और उनको सिखलाऊंगा कि आपको भी करना चाहिए, और मैं वैष्णव पोशाक में ही जाऊंगा। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ निकल पड़े। और शायद ये ऐसे पहले ही कोई वैष्णव सन्यासी होंगे जिन्होंने वैष्णव पोशाक त्याग नहीं किया। तो जैसे वो बाहर निकले तो स्वयं उनके शब्दों में हुआ ये कि उनको पता नहीं चला कि बाएं चलना है, दाएं चलना है। और आगे चले तो वहाँ पर एक व्यक्ति उनको मिलने आए। वो कहाँ से आए थे, एक कोई कंपनी थी, एक संस्था थी, वहाँ से आए थे। प्रभुपाद जी के पहचान के एक व्यक्ति थे जो मथुरा में रहते थे, उनका नाम अग्रवाल था। तो उनका बेटा गोपाल अग्रवाल वो अमेरिका में रहता था, तो मथुरा वाले अग्रवाल जी ने अपने बेटे को बताया था कि ऐसे ऐसे वृंदावन से एक स्वामी जी आने वाले हैं, तो उनको अपने घर में रखना थोड़ी देर के लिए, और जब वो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो उनको उनका स्वागत करना, अपने साथ ले जाना। तो जब वो पहुंचे थे न्यूयॉर्क में, तो गोपाल अग्रवाल ने किसी एक व्यक्ति को भेजा था उनका स्वागत करने के लिए। तो वैसे ले गए तो सीधे सिंधिया कंपनी के दफ्तर में ले गए उनको। आपको याद होगा कि जलदूत ये सिंधिया कंपनी की एक जहाज थी, और वो कंपनी की मालकिन थी सुमति मोरारजी, वो भी एक पुष्टि मार्गी वैष्णवी थी, बहुत श्रद्धालु थी, इसलिए तो उन्होंने एक टिकट दिया मालवाही ऐसे जहाज में प्रभुपाद जी को मुफ्त में जाने के लिए अनुमति दे दी उन्होंने। तो पहले वो सिंधिया कंपनी के दफ्तर में गए और उन्होंने जब बात की वहाँ उनके दफ्तर में, तो ये पहली बार उस दफ्तर के लोगों ने किसी एक सन्यासी को या इस तरह से एक साधु को देखा था। वो भी अमेरिकन ही लोग थे सारे, जो वहाँ कंपनी में काम करते थे अमेरिका में। साधारणतः जो आते थे वो सब व्यापारी हुआ करते थे या बहुत अमीर घर के लोग थे, कभी छुट्टी में आ गए तो वो आते थे। परंतु पहली बार ऐसे साधु आए और उनके पास एक ही पेटी थी हाथ में और छोटा कुछ थोड़ा सा कुछ हल्का इधर उधर था और उनके कपड़े भी साधारण थे। तो उनको देखकर सिंधिया कंपनी के दफ्तर के लोग थे, एक व्यक्ति थे मिस्टर फॉरेस्टर, तो उनको लगा कि ये तो गरीब व्यक्ति हैं और ये शायद एक पंडित होंगे, जो हिंदू धर्म के पंडित होंगे जो यहाँ पर अभी आए हैं। तो बातों बातों में तो उन्होंने कहा कि कब तक आप रहेंगे यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी ने उससे उनसे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर मैं निकल जाऊँ। वैसे गोपाल अग्रवाल के पास केवल 1 महीने रहने की बात हुई थी, तो उन्होंने सोचा 1 महीने वहाँ पर रह लूँगा और उसके बाद 1 महीने थोड़े न्यूयॉर्क और यहाँ वहाँ कुछ जाऊँगा, उसके बाद मैं वापस भारत चले जाऊँगा। ऐसे उस समय प्रभुपाद के विचार थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए 2 महीने बाद जब जहाज़ लौट के जाएगी वापस, तो उसमें कृपया मेरे लिए एक जगह रखिए। हाँ, तो ऐसे करके प्रभुपाद जी आगे चले। तो आगे चलते चलते जब वो बाहर निकले तो वहाँ पर जो जहाँ पर जहाज़ आई थी बंदर से, वहाँ से फिर वो निकल पड़े बस अड्डे की तरफ। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब बस सारे शहर में से होते हुए बाहर गया, तो ऐसा शहर कभी उन्होंने देखा नहीं था इतना। और फिर नदी पार करके, हडसन नदी है वहाँ पर, वो पार करके न्यू जर्सी साइड में गए और वहाँ पर इतने विशाल औद्योगिक कारखाने और उनके तरह तरह के और दफ्तर वगैरह थे, खास करके वहाँ जो तेल के को बनाने के लिए जो पेट्रोल आदि डीजल बनता है उसके बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने थे। फिर तेल को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक आदि थे। और जब उन्होंने आगे चल के देखा बाहर, इनको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी कहाँ जाते थे, दिल्ली से वृंदावन जाते थे और कलकत्ता बम्बई में तो रहे थे, परंतु उस समय वातावरण इतना ख़राब नहीं था बम्बई कलकत्ता दिल्ली आदि में। तो वो यहाँ पर जब आए, इतने बड़े बड़े कारखाने उन्होंने नहीं देखे थे और उनको पता चला कि इनकी संस्कृति कैसी है। और ख़ास करके उन्होंने जो विज्ञापन इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे उनको देखा और उनमें किन किन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा था उन विज्ञापनों के द्वारा। कहीं कोई सिगरेट की बात हो रही थी, तो कहीं कोई शराब की बात हो रही थी, कहीं कोई मांस की बात हो रही थी। इस तरह से जो भी कुछ चर्चा हो रही थी, जो भी कुछ दिखाया जा रहा था इनमें, वो सब नियमों के उल्लंघन के संबंध में था। और जब शहर के को छोड़कर वहाँ आगे चले गए तो बहुत सारे खेत और वगैरह सब उन्होंने देखे, परंतु ये इस तरह के कारखाने और इस तरह के विज्ञापन उन्होंने भारत में भी नहीं देखे थे। आजकल तो भारत विदेश से बुरा हो गया है, जहाँ तक विज्ञापनों की बात है, टेलीविज़न के कार्यक्रमों की बात है, सिनेमा की बात है। परंतु उस समय जब श्रील प्रभुपाद थे 50 से अधिक वर्ष पूर्व, 55 वर्ष लगभग पूर्व, तो उस समय भारत में दशा इतनी बुरी नहीं थी। तो ये सब जब प्रभुपाद जी ने देखा तो उनके मन में बहुत करुणा उत्पन्न हुई कि अरे कितना घोर अंधकार में ये लोग जी रहे हैं। वैसे इसका अनुमान तो प्रभुपाद जी ने पहले से ही लगा रखा था। जब वो जहाज़ में चल रहे थे तो उन्होंने ऐसे कविताएं भी लिखी थी, जिनमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ये पता नहीं कि ये लोग जो कि रजोगुण और तमोगुण में इतने लिप्त हैं, क्या ये मेरी भागवत और भगवद गीता की बातें समझ पाएंगे। तो अभी आके यहाँ पर देखकर प्रत्यक्ष वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि यहाँ इंद्र तृप्ति का कितना बड़ा वातावरण है। और धीरे धीरे फिर जैसे वो न्यू जर्सी से आगे पेंसिल्वेनिया नाम के राज्य में गए, उसी देश में बहुत सारे राज्य हैं ना, 50 से अधिक राज्य हैं, तो पेंसिल्वेनिया में गए, पहाड़ के भीतर से सुरंग थे उनमें से निकलते हुए गए, और जब पहुँचे वो अपने गंतव्य पर तो बीच रात 12 बज चुके थे। बस अड्डे पर पहुँची बस, और उस गांव का नाम था बटलर, राज्य का नाम था पेंसिल्वेनिया। तो वहाँ पर गोपाल अग्रवाल उनको लेने के लिए आए थे अपने गाड़ी में। तो उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि भारतीय परिवार के थे, मथुरा के थे, तो उन्होंने ऐसे अपने पीठ को झुकाकर प्रणाम किया, नमस्कार किया प्रभुपाद जी को, और कहा स्वागत स्वामी जी, आइए। और फिर वो आगे निकल पड़े, एक घंटा अपने गाड़ी में बिठाकर उनको अपने गांव में ले गए। वैसे पिट्सबर्ग में आए थे ये सब। ये देखिए उन वो ये हैं गोपाल अग्रवाल, बीच में आप देख रहे हैं ना जो वृद्ध व्यक्ति हैं, गोपाल अग्रवाल ये हैं। अभी ये अभी अभी की चित्र है ये, जब जुहू मंदिर आए थे, और उनके बाएं तरफ हमारे दाहिने तरफ वो उनके पुत्र हैं जिनका नाम था ब्रिज। और जब प्रभुपाद जी उनके घर में गए तो ये ब्रिज केवल 3 महीने के थे। और जब पहली बार ये उठे और उन्होंने चलना शुरू किया, उस समय प्रभुपाद जी थे उनके घर में, तो प्रभुपाद जी ने ताली बजाई थी कि अभी बच्चा चलने लग रहा है। तो कह रही है अभी बहुत बड़े हो गए अभी इतने सालों के बाद में। और गोपाल अग्रवाल ये हैं उनके पुत्र जिनका नाम है ब्रिज। तो वो जब और चर्चा करेंगे जब हम गोपाल अग्रवाल के घर में पहुंच जाएंगे। तो पिट्सबर्ग में आए थे वो, बटलर में नहीं, पिट्सबर्ग में बस रुका। पिट्सबर्ग से बटलर जो है छोटा सा शहर था, छोटा, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे वहाँ पर, तो 1 घंटे का रास्ता था गाड़ी से। तो प्रभुपाद जी ने देखिए कितनी लंबी सफ़र की, पहले तो 35 दिन का सफ़र समुद्र पार किया, उसके बाद फिर वो बस से आए पिट्सबर्ग, रात भर सफ़र किया, दिन भर सफ़र किया, और उसके बाद और अभी आगे सफ़र करके वो पहुँचे बटलर में, गोपाल अग्रवाल के घर में। तो वैसे गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी जो अमेरिकन थी जिनका नाम था सैली, वो सोच रहे थे कि शायद ये भक्तिवेदांत स्वामी जो हैं ये नहीं आएंगे। ऐसे कोई कानूनी एक नियम था कि जो भी कोई आते उनके लिए एक स्वागत पत्र भेजना पड़ता था, निमंत्रण पत्र। तो कई बार गोपाल अग्रवाल जी के पिताजी ने उनसे कहा था कि देखो ये फलाना साधु आने वाले हैं, ये आएंगे, तो एक मुझे निमंत्रण पत्र चाहिए ताकि यहाँ वीज़ा मिलने के लिए। तो अनेक बार ऐसे हुआ था और कोई साधु नहीं आए थे। तो गोपाल अग्रवाल ने भी सोचा कि शायद इस बार भी ये नहीं आएंगे कोई। लेकिन एक हफ्ते पहले उनको फिर चिट्ठी मिली कि ये भक्तिवेदांत स्वामी पहुँचने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो तब उनको और उनकी पत्नी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और सोचा कि अरे ये अभी अपने घर में आएंगे, हमने तो ऐसे ही सोचा था कि शायद ये दूसरों की तरह शायद नहीं आएंगे। तो उस चिट्ठी में, उस लिफाफे के अंदर प्रभुपाद जी का एक चित्र भी था ताकि उनको वो पहचान सकें। तो उनको जब देखा तो समझ गए कि भाई इनको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कितने सन्यासी लोग आते हैं अमेरिका में और भारतीय सन्यासी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ ये था कि गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल का एक छोटा सा घर था, उसमें दो कमरे थे जहाँ उनके बच्चे भी थे, और ये उनकी पत्नी है। इनका इंटरव्यू ये है, प्रभुपाद जी के आने के कितने साल बाद, 17 साल बाद 1965 में वो इनके यहाँ पर रुके थे, और फिर ये जो एक वार्तालाप हुआ उनके साथ में, ये 17 साल बाद हुआ। तो खैर, जब गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल को पता चला तो उन्होंने सोचा कि अरे, हमारे पास दो ही कमरे हैं, एक तो एक कमरे में हमारे दो बच्चे रहते हैं, दूसरे कमरे में हम रहते हैं, और नीचे एक जो है सबके लिए स्वागत कक्ष है, रसोई घर है, तो उनको नीचे स्वागत कक्ष में ही रखना पड़ेगा, तो कहाँ उनको ठहराएंगे हम। और ये आ भी गए, और मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गोपाल अग्रवाल के पिताजी ने उनसे कहा था, तो इसलिए खैर एक कर्तव्यबद्ध होकर उन्होंने उनसे फिर न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग की जो बस का टिकट था वो सब खरीद कर भेज दिया था वहाँ पे। तो खैर, ये बटलर पेंसिल्वेनिया, ये जो शहर है, छोटा शहर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लोग रहते थे, तो इतना बड़ा शहर भी नहीं था, और ये बड़े बड़े कारखानों के लिए प्रसिद्ध था, तरह तरह के, यहाँ तेल के, कोयले के और पेट्रोल के, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें थी, और फ्रिज बनाने के लिए रबर के वस्तुएं, और साथ साथ में वहाँ पर जो जीप गाड़ी है, जो सबसे पहले जीप गाड़ी बनी वो इस छोटे से गांव में बनी, छोटे से शहर में बनी। तो वहाँ पर तरह तरह के लोग, ईसाई लोग ज़्यादातर थे, लेकिन शायद हिंदू कोई नहीं थे, शायद गोपाल अग्रवाल पहले व्यक्ति हुए होंगे वहाँ पर जो उस छोटे से शहर में आए और वहाँ रहे, और निश्चित रूप से कोई वैष्णव सन्यासी या कोई साधु पहले इस शहर में नहीं आए थे। तो फिर वो आकर पहुँचे, जब पहुँचे तो प्रातःकाल 4 बज गए थे, तो गोपाल अग्रवाल उनको लेकर आए, और सैली अग्रवाल ने उन्होंने दरवाज़ा खोला, और फिर उनको स्वागत कक्ष में ही जो सोफ़ा है, शैया है, वहीं पर उन्होंने उनको रुकाया कि आप रात को यहाँ पर रुकिए। तो फिर वहाँ पर रहे वो, परंतु क्योंकि उनके पास दो ही रहने के लिए कमरे थे, तो उन्होंने पास वाले किसी एक धर्मशाले एक के प्रकार के एक का एक स्थान था जो अच्छी सुविधा थी वहाँ पर, तो वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था कर ली, YMCA। तो उन्होंने कहा कि आप, हमने आपका बुकिंग वहाँ कर लिया है, आप दिन में वहाँ पर रहिए, दिन में यहाँ पर रहिए, रात को वहाँ सोने के लिए चले जाइए। तो ऐसे ही करते थे प्रभुपाद जी। तो जब यहाँ पर आए तो ऐसे भारतीय लोगों को तो बहुत कम देखा था लोगों ने, और वो भी एक सन्यासी हैं, बूढ़े सन्यासी हैं, तो सबके मन में एक जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति कौन है जो अग्रवाल के यहाँ रह रहे हैं। तो सैली अग्रवाल ने सोचा कि इतने सारे लोग मुझे पूछेंगे कि कौन आए हैं, ये कौन है, कौन है, तो इससे अच्छा कि मैं सब लोगों के प्रश्न का उत्तर दूँ, अच्छा ये होगा कि समाचार पत्र में उनके बारे में कोई लेख छप जाए, इससे कोई मुझे और प्रश्न पूछेंगे नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, और सबको पता भी चलेगा कि ये आए, और कोई उनका संग लेना भी चाहें तो मिल सकते हैं उनको। तो पहली बार फिर वो एक समाचार पत्र के दफ्तर में गए, तो उस दफ्तर के व्यक्ति ने बोला कि भाई, इन ये खबर छाप के क्या फ़ायदा, क्या है इसमें, इसमें कोई हमारे जो ग्राहक हैं उनको पढ़ने लायक कुछ ऐसे चाहिए ना, ये कोई बूढ़े सन्यासी आए हैं साधु, तो ये हमारे लिए कोई मतलब की बात नहीं है। फिर वो दूसरे एक समाचार पत्र में गई जिसका नाम था बटलर ईगल। तो वहाँ पर वो समाचार पत्र के संपादक तैयार हुए, और अगले दिन उन्होंने बहुत अच्छी एक अच्छा एक लेख छपवा दिया उनके उस पत्रिका समाचार पत्र में, और लिखा हुआ ये था कि अस्खलित हिंदू भाषा में बात करने वाले एक हिंदू साधु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस तरह से। और उनका एक चित्र भी लिया था, और चित्र भी उन्होंने छपवाया समाचार पत्र में, और ये भी कहा, और ऊपर उनके चित्र के नीचे था भक्ति योग के दूत। और फिर प्रभुपाद जी से उन्होंने बातचीत भी की, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा आंदोलन है कि सबके भगवत चेतना को जागृत करना, जो भगवान है वो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, और मनुष्य देह ये हमारे 84 लाख योनियों में से बहुत दुर्लभ ही प्राप्त होता है, और ये एक अनमोल अवसर है हमारे लिए, हमारे जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत थोड़ा सा प्रचार किया उनको। फिर उस पत्रिका उस लेख में ये भी बताया गया था कि किस तरह से वो यहाँ पर आए, और खास करके उनके जो भोजन पकाने के जो पात्र आदि थे वो कैसे थे, वो सब उन्होंने बताया, क्या खाते हैं वो, और वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध लेते हैं, इसका मतलब है कि शराब नहीं लेते, केवल दूध लेते हैं इसका मतलब शराब नहीं लेते, क्योंकि वहाँ के लिए तो साधारण है ना, महिलाएं हों पुरुष हों सब लोग सिगरेट पीते हैं अब, और शराब पीते या कम से कम पीते थे उस समय, सिगरेट के आजकल कम हो गया है, लेकिन शराब तो सभी लोग पी लेते हैं, उनके लिए तो साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो ये केवल दूध पीते हैं, और वो स्वयं बताते हैं कि दूध जो है छोटे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए चमत्कार का आहार है। इस तरह से उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकेंगे, और किस प्रकार से वो भोजन बनाते हैं उसका भी संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया कि एक पात्र है और उसमें इन्हें कई पात्र हैं, और सबसे नीचे वाले पात्र में दाल होता है, और फिर दाल जब तैयार हो जाता है तो उससे जो बाफ निकलता है उसमें से वाष्पी, तो हाँ ये प्रभुपाद जी उनके घर में भोजन बना रहे थे, अपना प्रसाद बना रहे थे। देखिए उनका कुकर दिख रहा है वहाँ पर कोने में, है ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और नीचे से जो फिर बाप आता था वाष्पी, उससे ऊपर रखे हुए जो सब्जी वगैरह थे वो भी ठीक उबल जाते थे, पक जाते थे वो भी। तो इस तरह से वो जब वहाँ रहे थे तो इस तरह से बनाए करते थे। तो अभी गोपाल अग्रवाल और सहेली अग्रवाल ने सोचा कि ये तो केवल अपने जिन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं केवल उनके लिए कुछ ज़्यादा मुद्रणालय उनको छपवाने के लिए, वो ज़्यादा यहाँ दान लेने के लिए आए हैं, बस थोड़े समय के लिए रहेंगे और जाएंगे। उनके मन में ये कल्पना नहीं थी कि ये यहाँ पर रह के एक आंदोलन अपना शुरू करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं, ऐसी बात तो उनके मन में थी ही नहीं। और खास करके उनके मन में थोड़ा सा संकोच भी हुआ होगा कि थोड़ी शर्मिंदगी आई होगी उनको कि अरे ये साधु हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं, दूसरे लोग कैसे सोचेंगे क्या। तो वो चाहते थे कि वो ज़्यादा बहुत लोगों के बीच में ना जाएं, बहुत ज़्यादा लहरें ना पैदा करें वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी भी ने भी ऐसे ही किया। तो शाम को देखिए प्रभुपाद जी उस समय जब गए थे तो अपना भागवतम जो ग्रंथ है उन्होंने जो लिखा था ये गोपाल अग्रवाल के जो स्वागत कक्ष है घर के, उसमें ये चित्र लिया हुआ था। तो ये 1965 के प्रभुपाद जी हैं, जिनकी आयु उस समय 70 वर्ष की थी। तो सोचिए, 70 वर्ष को पहले पहले कोई नया काम करने के लिए कोई उतनी दूर जाता है। 70 साल में तो सभी लोग आराम करना चाहते हैं, कार्य निवृत्त होना चाहते हैं, नहीं? तो खैर, तो प्रभुपाद फिर भी गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल ने उनके घर में प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक सत्संग रखा था। सत्संग अर्थात जिस तरह से हम लोग करते हैं बैठ के कीर्तन करना, उस तरह से नहीं। वो केवल बैठते थे और जिनको मिलना था वो आके उनसे मिलते थे। तो उनके जो रिश्तेदार थे या उनके कोई पहचान के लोग थे, तो उनको बुलाते थे और वो लोग आके उनसे मिलते थे। परंतु एक परिस्थिति ऐसी हुई कि क्या बात करना है इनसे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। कैसे प्रश्न करें ये नहीं पता होता था उनको, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी कुछ तो ज्ञान चाहिए ना, कुछ तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या पूछेंगे। उनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था, भगवद गीता का नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने, तो क्या पूछेंगे ये। तो खैर, फिर भी कुछ ना कुछ आके मिल लेते थे लोग, और काफ़ी सब जगह लोग देखने लगे कि अरे इनके पास कोई सामान ही नहीं है, बस एक छोटी सी पेटी लेकर घूमते हैं, इसमें सब कुछ उनका है। और सबसे आश्चर्यचकित हुए वो उनकी उनके छाता को देखकर, जहाँ भी वो जाते थे अपनी छतरी को लेकर, छाता को लेकर जाते थे, और एक ऐसी टोपी भी पहन लेते थे जैसे कान को भी ढक के, तक क्योंकि काफ़ी ठंड भी हुआ करती थी वहाँ पर, तो इसलिए वो ऐसे सर पे एक टोपी पहन के भी चलते थे। तो सभी लोग उनको पसंद करने लगे और उनसे आके बातचीत करते थे। और सैली अग्रवाल बताती हैं कि जब प्रभुपाद जी उनके घर में रहीं तो उनको बिल्कुल तनाव नहीं हुआ। प्रभुपाद जी क्या करते थे कि रात को YMCA जहाँ पे वो रहते थे, रात को वहाँ चले जाते थे, सुबह 7 बजे आते थे इनके घर में, और फिर यहाँ लगभग 1 बजे तक रहते थे, फिर दोपहर में वापस अपने निवास स्थान में जाते थे, फिर से 6 बजे तक लौट के आते थे। तो फिर भी गोपाल और सैली अग्रवाल के घर में देखिए सुबह 7 से लेकर शाम को दोपहर 1, तो 5 घंटे 8 घंटे दिन में उनके यहाँ पर होते थे वो। तो सैली अग्रवाल कहती हैं कि साधारणतः जब हमारे घर में कोई व्यक्ति आके रहते हैं, और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति जिनको हम पहचानते नहीं हैं, तो हमारे लिए थोड़ा तनाव होता है कि इनको कैसे संभाल के रखें, उनको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, उनसे बैठ के बात भी दिन भर करना पड़ता है, हम अपने काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी अतिथि की सेवा करनी पड़ती है। तो सैली अग्रवाल कहती हैं कि मुझे इस तरह का तनाव या इस तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थे। जब मैं मेरे बच्चों के साथ में उनके साथ में थी, तो फिर वो अपने आप बैठ के बस जप करते थे। मैं रसोई में यदि व्यस्त रहती या दूसरे घर के कामों में व्यस्त रहती, तो स्वामी जी जो हैं वो कभी भी आके हमको परेशान नहीं करते थे। वो चुपचाप वो स्वागत कक्ष में घर में बैठ के वहाँ पे माला में जप किया करते थे। और कभी कभी शाम को जब लोग आते थे तो सिगरेट पीते थे, सिगरेट का धुआं कमरे में रहता था। तो सैली अग्रवाल स्वयं सिगरेट पीती थी, क्योंकि उनके यहाँ तो एक प्रथा थी ना, सब लोग पीते हैं, पुरुष स्त्री सब लोग। तो उन्होंने उनको इतना पता था कि यद्यपि हम लोग पीते हैं लेकिन बड़ों के सामने पीना अच्छा नहीं है। इसलिए सैली अग्रवाल बताया करती थी कि हालांकि मैं सिगरेट पीती थी, परंतु प्रभुपाद जी के सामने मैंने कभी नहीं पिया, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं उनके सामने नहीं पीते थे, ऐसे मेरे पति ने बताया था, इसलिए मैं नहीं पीती थी, नहीं लेती थी। और जब मैंने स्वामी जी को देखा तो मुझे लगा कि ये भी मेरे पिता तुल्य हैं, पिता जैसे ही लगते हैं। और थोड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए मुझे इनके सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और खास करके जब लोग आते थे, अतिथि लोग, उनको कुछ पता नहीं ये सन्यासी है साधु है, सन्यासी साधु के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना नहीं करना, उनको कुछ नहीं पता था। तो वो सब लोग आके सिगरेट पीते थे, कमरे में धुआं धुआं भर जाता था। तो सैली अग्रवाल कहती थी, थोड़ा क्षमा याचना करती थी, तो क्षमा कीजिए स्वामी जी, यहाँ लोग आके सारे कमरे में सिगरेट पी रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। और प्रभुपाद जी कहते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तो प्रभुपाद जी को कितना कुछ सहन करना पड़ा। अभी उस समय उनको कहने के लिए कोई था नहीं कि भाई ये सन्यासी हैं, जरा इनका ख्याल रखो, सम्मान दे दो, प्रणाम करो, पैर छुओ, कोई कहने वाला नहीं था। उनको इतना भी नहीं पता था कि एक सन्यासी के सामने या उनके साथ कमरे में बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हुए सिगरेट आदि नहीं पीते हैं, शराब आदि नहीं पीते हैं, इनको ये सब पता ही नहीं था। इनकी संस्कृति अलग ही थी। तो खैर, प्रभुपाद जी ने कुछ कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप उन्होंने सब कुछ सहन किया, कहा कि बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके बात को उन्होंने टाल दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का एक विनियमित एक दैनिक कार्यक्रम हुआ करता था। तो वो एक दलिया जैसे व्यंजन को लाए थे साथ में भारत से, कई हफ्तों के लिए उनके पास था। तो सुबह का नाश्ता जो है, नाश्ता प्रसाद जो है, वो बनवाते थे, उसको तैयार करके सूखा करके दूध के साथ उसको लेते थे। तो 7, 7:15, 7:30 बजे ऐसे नाश्ता प्रसाद लेते थे। उसके बाद फिर 9:30 बजे वो रसोई करना शुरू करते थे, स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन बनाते थे, अपना प्रसाद बनाते थे। सैली अग्रवाल के हाथ से उन्होंने नहीं लिया प्रसाद, क्योंकि, और ये बात भी अब समाचार पत्र में छपी कि ये खुद स्वयं अपना प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि सैली अग्रवाल क्या थी, वो तो भक्त नहीं थी। उनके यहाँ तो शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट पीना, ये तो सब बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से बनाए हुआ कैसे खा सकते थे प्रभुपाद जी? तो इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं अपने कुकर में बनाया करते थे ये सब। इस तरह से मैंने कहा, सबसे नीचे दाल और उसके ऊपर तरह तरह की सब्जी, ये देखिए, ये प्रभुपाद जी के कमरे में अभी तक है, प्रभुपाद जी का कुकर। इसमें ये चावल, दाल, सब्जी सब बनाते थे, एक एक साथ सब कुछ बना लेते थे। इस तरह से ये प्रभुपाद जी के कमरे में ये है ये। तो 9:30 बजे सुबह वो रसोई करना शुरू करते थे, और फिर 11:30 बजे तक वो रसोई बनाते, 2 घंटे लग जाते उनको बनाना, साफ करना, सब सब सब्जियों को काटना, तैयारी करना, सब बहुत होता था, 2 घंटे लग जाते थे उनको। फिर 11:30 बजे वो अपना दोपहर का भोजन पा लेते थे, और बिना बेलन के चपाती बनाते थे, हाँ, स्वयं, और थोड़ी सब्जियां भी बनाया करते थे। तो 11:30 बजे वो प्रसाद पा लेते थे सुबह सुबह को। तो गोपाल अग्रवाल जो हैं, वो 7:30 बजे सुबह को अपने दफ्तर के लिए निकल जाते थे, और 12 बजे दोपहर में, दोपहर के प्रसाद पाने के लिए आ जाते, भोजन का, उस सब प्रसाद तो नहीं, भोजन लेने के लिए आ जाते थे। तो सैली अग्रवाल उनको कोई, वो अमेरिकन कोई पदार्थ दिया करती थी, सैंडविच आदि कुछ दे देती थी उनको, उनका भोजन वैसे है। परंतु धीरे धीरे जब गोपाल अग्रवाल ने देखा कि तो बढ़िया कचौड़ी और ये पराठे, सब चपाती और सब्जी दाल सब बन रहा है, तो उन्होंने भी खाया, फिर सैली अग्रवाल ने भी खाया, और उनको बहुत अच्छा लगा, और बोले कि इतना आनंद आया। फिर उसके बाद वो हमारे लिए भोजन बनाने बनाते थे, अतिथि थे वो, और हमें अतिथि को खिलाना चाहिए था, परंतु अतिथि हमें खिला रहे थे। और इतना स्वादिष्ट उनका बनाया हुआ भोजन हुआ करता था, शुद्ध शाकाहारी था, तो उनकी हम क्या सेवा कर सकते थे। तो हमें मज़ा आता था, आनंद आता था उनको अमेरिका दिखाने में, तो हम उनको गाड़ी में ले जाते थे, कभी सैर में ले जाते थे। तो सारे बड़े बड़े बाजार थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि यहाँ कितने सारी चीज़ें हैं। और अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जीवन शैली कैसे होती है, रहन सहन कैसा होता है, ये सब प्रभुपाद जी देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे। और इस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ पर रहे उनके घर में। तो वो कहते हैं कि उस समय मुझे लगा कि मैं इनकी बेटी हूँ। और उनको कोई एक इस तरह का कोई कठिनाई नहीं हुई कि कोई ये नए आदमी हमारे घर में कौन आए, ना जान ना पहचान, हमारे घर के अंदर रह रहे हैं, दिन भर घर में रहते हैं, है ना। मेरे पति भी अकेले, वो तो दफ्तर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रभुपाद जी के रहने पर उनको बड़ा आनंद सा लगा कि ये मेरे पिता जैसे हैं। और इसी तरह से उनके हृदय में प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। तो फिर शाम के जो कार्यक्रम थे अग्रवाल के घर में, वो होते रहे। और कभी कभी ये लोग उनके लिए कॉफ़ी बनाया करते थे, सैली अग्रवाल, कुछ थोड़ा नाश्ता भी बनाया करते थे। और फिर प्रभुपाद जी कुछ नहीं लेते थे, केवल रात को 9 बजे कहते थे कि गुनगुना पानी मुझे पिला दो, तो पानी ऐसे ले लेते थे। और एक बात जो सुनने लायक ये है कि श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में भी अपने वस्त्र स्वयं धोया करते थे, किसी और को धोने नहीं दिया उन्होंने, है ना। और वो सुनना चाह वो देखना चाहते थे कि आप लोग कैसे धोते हो वस्त्र, कैसे आप सुखाते हो। तो मशीन से काम चलता है, तो प्रभुपाद जी सारे देख ली कि आप कैसे धोते हैं, कैसे सुखाते हैं। तो वो स्वयं जाके पीछे आंगन में फिर वो अपने कपड़ों को सुखाए करते थे। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो उनका बच्चा था सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल का, वो उस समय शायद 6 या 7 महीने का बच्चा था। पहली बार वो उठा, और पहले उठ के फिर गिर पड़ता था, इस बार उठा वो बच्चा और गिरा नहीं और चलने लगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ थे उस कमरे में उस समय, और तो इसी सोफे के ऊपर प्रभुपाद जी सोया करते थे पहली बार, जब पहले रात को जब आए थे, पहले 2 दिन। तो ये है वो बच्चा जिसका चित्र बाद में भी हमने देखा। तो प्रभुपाद जी ने खूब ताली बजाई और वहाँ पे छोटा सा त्योहार हुआ। और इस तरह से कभी कभी वो पड़ोसी के आंगन में बैठते थे, कभी हम लोग भी साथ में बैठते थे, ऐसे वो सैली अग्रवाल कहने लगी। तो गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था पैमेला, उसकी शायद 3 साल की आयु थी। तो एक बार वो आई, और शायद अपने स्कूल में सुना होगा जीसस, जीसस का नाम सुना होगा, ईसाई लोग थे ना वहाँ पे। तो छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने आके प्रभुपाद से कहा कि आपका नाम स्वामी जीसस है, स्वामी जीसस, स्वामी जीसस। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे और कहने लगे अब एक बच्ची इनका नेतृत्व करेंगी। और सैली अग्रवाल भी हंसने लगी। तो ऐसे जब ये समाचार पत्र में खबर छपी थी प्रभुपाद जी के बारे में, तो पास वाले किसी एक शहर में एक कॉलेज के एक अध्यापक थे, प्रोफेसर, जिनका नाम था लार्सन, प्रोफेसर लार्सन। तो उन्होंने सोचा कि ये वही भारत से आए हुए कोई संत हैं, कोई विद्वान हैं, तो हमारे कॉलेज के छात्रों को के लिए हमें कोई प्रवचन का आयोजन करना चाहिए। तो उन्होंने गोपाल अग्रवाल के घर में फ़ोन किया, पता चला वो दूसरी जगह रह रहे हैं रात को। फिर वहाँ से उनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने प्रवचन की व्यवस्था कर ली और प्रभुपाद जी को लेने के लिए वो आ गए। तो पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति से मिले थे वो प्रोफेसर, और भारतीय नामों का उच्चारण करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, और ये भी भक्ति वेदांत स्वामी, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप जरा मुझे बताइए उच्चारण करके मुझे बताइए कि आपके नाम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपका परिचय दूंगा छात्रों को तो मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। तो वो प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे कई बार सुनना पड़ा, क्योंकि वो नाम इतना कठिन था मेरे लिए, एक बार दो बार सुनने से मुझे पता नहीं चला। इसलिए प्रभुपाद जी इतने धीरज रख के बिना कोई गुस्सा किए हुए उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बार बार एक के बाद एक उनके नाम का उच्चारण किया कि हम कैसे आपको बुलाएं। कहा स्वामी जी भक्ति वेदांत। तो ये खैर उनको फिर कंठस्थ हो गया उनका नाम। फिर वहाँ पहली बार प्रभुपाद जी ने अमेरिका में एक प्रवचन दिया। अब गोपाल अग्रवाल के घर में वैसे लोग आके मिलते थे, लेकिन वो क्या है कि एक वार्तालाप जैसे होता था, प्रवचन जैसे नहीं था वो। लेकिन इस बार इस कॉलेज में 100 छात्र आए थे और प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका की भूमि में एक प्रवचन दिया। और ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत कीर्तन उन्होंने किया और थोड़ा प्रवचन दिया, फिर 45-50 मिनट में फिर घंटी बजी, छात्रों को दूसरे कक्षा में जाना था। तो पहले प्रवचन के बाद फिर थोड़ा पानी वगैरह उनको पिलाया और दूसरे एक कक्षा में उनको प्रवचन के लिए ले गए। तो वहाँ पर फिर 1 बजे तक प्रवचन चला और वहाँ उसी कॉलेज में विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर मोहन शर्मा, वो पढ़ाए करते थे, वो भी भारतीय थे। तो वो उन्होंने निवेदन किया प्रभुपाद जी को कि आप हमारे घर में आइए। तो प्रभुपाद जी वो डॉक्टर शर्मा के साथ उनके घर में गए और वहाँ उन्होंने थोड़े कुछ फल लिए, थोड़ा दूध लिया, वहाँ सबको आशीर्वाद लिया। और वो प्रोफेसर बताते हैं कि जब यहाँ स्वामी जी आए वो ऐसे पेश आए कि मानो कि वो यहाँ थोड़े समय के लिए ही आए हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं, और वो केवल अपने पुस्तकों का अनुवाद कर लेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो खैर, लेकिन प्रभुपाद जी आगे चल के रहे। उधर प्रभुपाद जी जब नौके में थे, जब आ रहे थे बॉस्टन अमेरिका में, तो उन्होंने ये सोचा था ना कि ये यहाँ के लोग मेरी बातों को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको संशय था, इसलिए उन्होंने भगवान से भी प्रार्थना की थी इस बारे में। और अब जबकि 2 प्रवचन दे चुके थे प्रभुपाद जी, अब वो नीचे मैदान में अभी परीक्षा हो रही थी कि क्या ये लोग वास्तव में समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को थोड़ी प्रेरणा मिली इन 2 प्रवचनों के बाद में। उधर प्रभुपाद जी को एक चिट्ठी मिली सुमति मुरारजी से और उन्होंने सारी बातें कही, आप कैसे, अच्छा हैं, हम लोग भी यहाँ ठीक हैं इत्यादि, आपकी तबीयत जब तक ठीक न हो आप नहीं आइए, लौट के मत आइए भारत में, आप वहीं तक रहिए और केवल आपका आंदोलन जब पूर्ण हो जाएगा उस समय ही आप लौट कर आइए। तो फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि सारी चिट्ठी में जहाँ कि उन्होंने मेरे तबीयत के बारे में पूछा है और मेरी आशीर्वाद की याचना की है इत्यादि, इस सारे पत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य है वो अंतिम वाक्य है जिसमें सुमति मुरारजी ने कहा है कि आप कृपया आपके आंदोलन को समाप्त करके ही आइए, उसके पहले मत आइए। तो प्रभुपाद जी सोचने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो पहले सोचा था मैं 2 महीने के लिए आऊँगा यहाँ पर, और ऐसे सिंधिया कंपनी के दफ्तर में बॉस्टन में यही बताया था, न्यूयॉर्क में, कि 2 महीने के लिए रहूँगा। लेकिन अब उनके मन में विचार था कि अभी सुमति मुरारजी ने अच्छा सुझाव दिया है कि मुझे यहाँ आंदोलन समाप्त करके ही लौटना होगा, लेकिन कैसे लौटूँ, वैसे यहाँ पर रहने के लिए 1 महीने की अनुमति है, फिर और 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मैं खींच सकता हूँ यहाँ वहाँ ठहर के न्यूयॉर्क में जाके, फिर अंतिम मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सोचा, जब एक महीना वहाँ बटलर में समाप्त हुआ तो उनको बटलर छोड़ के जाना पड़ा। उस समय वहाँ एक और एक बड़ा शहर था जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। तो वहाँ पे एक विश्वविद्यालय में एक संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक थे। तो उन्होंने उनसे बातचीत कर ली थी और उन्होंने वो निकल पड़े वहाँ से फिलाडेल्फिया के लिए, और सोच रहे थे कि फिलाडेल्फिया से आगे चल के मैं न्यूयॉर्क चले जाऊँगा। तो सैली अग्रवाल, तो वो कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, यद्यपि इस सज्जन को मिले हुए केवल एक महीना हो गया था मेरे लिए और ये भी भारतीय थे, परंतु मुझे एक ऐसे मन में एक स्नेह उत्पन्न हुआ कि कैसे ये, इनको इतने वृद्ध हैं ये, कैसे इनको अकेले छोड़ूं मैं, ये अकेले जाएंगे, ना जान ना पहचान, कम से कम हम लोग यहाँ हैं, हम लोग देखभाल कर रहे हैं, अभी ये फिलाडेल्फिया जाएंगे, फिलाडेल्फिया में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, वहाँ से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, इतना बड़ा शहर है, क्या करेंगे वो, और यदि वहाँ कुछ ठीक हुआ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई तो क्या हुआ। तो सैली अग्रवाल कहती हैं कि मैं बीमार पड़ गई ऐसे, कि ये सोच सोच के कि इनका क्या होगा अभी आगे चल के। तो देखिए, एक महान वैष्णव की सेवा करने से और उनके प्रति आसक्त होने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अभी सैली अग्रवाल भले इस जन्म में 16 माला करने वाली भक्त न भी हुई हों, पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, परंतु ये देखिए आ गई, ये तो हाँ, ये सैली अग्रवाल है, देखिए हाँ, ये तो बहुत अपने बुढ़ापे की बात है। ये तो भले माला वगैरह नहीं करती होंगी वो, लेकिन देखिए भक्तों के संग में कितने आनंद से बैठी हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा उनको उनके ऊपर तो है ना, और भगवान की कृपा तो होगी क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की सेवा की और उनके प्रति आसक्त हुए, उनके बारे में चिंता कर रही थी कि इनका क्या होगा, कौन इनको खिलाएगा, कौन पिलाएगा। इस तरह से भक्तों के बारे में सोच के उनकी सेवा करने से आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो गोपाल अग्रवाल भी बहुत चिंतित थे। फिर गोपाल अग्रवाल ने थोड़े सिक्के, पैसे, जो वहाँ के पैसे होते हैं ना, सिक्के थोड़े दिए, क्योंकि वहाँ हर चीज़ के लिए सिक्कों की ज़रूरत होती है। कुछ भी चाहिए तो वहाँ जाके, टेलीफोन हो या कुछ खरीदना हो, मशीन होते हैं वहाँ पर, तो थोड़े सिक्के डालने पड़ते हैं। और अब यदि आपको कपड़े भी धोने हो बाहर, तो मशीन होती है, तो उसमें आपको पैसे डालने पड़ते हैं। थोड़े सिक्के डाल के फिर आप अपने कपड़े धोकर ले जा सकते हो। तो इस तरह से गोपाल अग्रवाल जी ने उनको एक छोटी सी थैली में बहुत सारे सिक्के दिए, ये आपको काम पड़ेंगे, काम में आएंगे ये, तो आप साथ में रखिए। यदि आपको स्नान भी करना पड़े, जैसे बस अड्डे में या रेल अड्डे में, कहाँ भी, जहाँ भी हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सब सिक्के हैं, इनको आप डालिए, आप चलिए आगे। तो फिर जब प्रभुपाद जी वहाँ से निकल पड़े तो दोनों, गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल, को बहुत दुख लगा। खैर, ये होते हैं सन्यासी, भले जब उनके साथ में रहते थे तो इतने निकटता से रहे, उनके पूछताछ करते थे, ये आप कपड़े कैसे धोते हो, ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, लेकिन जब जाने का समय आया तो निरासक्त थे, क्योंकि उनका उनकी सेवा थी भगवान कृष्ण के लिए भ्रमण करना, प्रचार करना, एक जगह में रह के आनंद करना, ये तो नहीं था उनका उनका उद्देश्य, यहाँ इतने दूर तो इसके लिए तो नहीं आए वो। यदि आराम ही करना होता तो वृंदावन में रह जाते, इतनी अच्छी व्यवस्था उनके लिए थी वृंदावन में। फिर भी जब यहाँ आए थे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था, आवश्यकता थी, इसलिए अग्रवाल के परिवार में वो रहे, लेकिन अभी यहाँ पर आगे जाने का समय हो गया था। और जो अग्रवाल के घर में बटलर में जब रहे, उससे उन्हें फायदे अनेक हुए। सर्वप्रथम उनको ये एक स्वयं अनुभव हुआ कि अमेरिका में किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पे प्रचार कैसे किया जाना चाहिए, इन लोगों की विचारधारा कैसी है, जीवन शैली कैसी है। तो ये एक अनुभव हो गया और उनको एक हृदय में एक उत्साह और निष्ठा बढ़ गया कि हाँ, मैं यहाँ इन लोगों को भी प्रचार कर पाऊँगा। क्योंकि पहले उनके मन में संशय था, संकोच था, ये लोग मेरी भाषा को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। परंतु अब अग्रवाल जी के घर में रहने के बाद, बटलर में, अब उनको ये निश्चय हुआ कि हाँ, मैं प्रचार अमेरिका में कर पाऊँगा। और अभी उनको ये भी देखकर अच्छा लगा कि मैं अमेरिका में रह के मैं, चलो, मेरे शाकाहारी भोजन को भी मैं खा सकता हूँ और यहाँ जो भी अन्य आवश्यकताएं हैं वो भी, जो मेरी अंग्रेजी भाषा है, ये लोग समझ सकते हैं। और इस तरह से 18 अक्टूबर को बटलर शहर में एक महीना पूरा रहने के बाद प्रभुपाद जी अभी निकल पड़े बटलर से और फिलाडेल्फिया शहर के लिए रवाना हुए। और अगले सप्ताह हम देखेंगे कि वहाँ पर फिलाडेल्फिया से आगे चल के फिर जब वो न्यूयॉर्क पहुँचे, हाँ, तो वहाँ क्या हुआ। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी जब दोबारा न्यूयॉर्क आए तो क्या हुआ और किन से मिले, कहाँ रहे, कैसे उन्होंने प्रचार शुरू किया, यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो ठीक इसी समय अगले मंगलवार को आप आइए और इस प्रभुपाद कथा के कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।